ఓం శాంతి. అవ్యక్తవాణి 9 జూన్ 1969. సుస్తీ కా మీఠా రూప్ ఆలస్య. 28వా పాయింట్ హై, జితనా జితనా నజదీక్ హోతే జాయేంగే ఉతనా ఉతనా నజారే భీ నజదీక్ హోతే జాయేంగే. बाबा कहते हैं जितना जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना उतना नज़ारे भी नज़दीक होते जाएंगे. बच्चे नज़दीक माना कहाँ पहुंच रहे हैं? जितना बुद्धि से बाप के पास, बाप के नज़दीक पहुंचेंगे उतना नजारे भी स्पष्ट और नजदीक होते जाएंगे. सतयुग के नजारों की बात बाद में करते हैं, पहले संगम के बारे में समझते हैं. बच्चों का कर्तव्य है कि इस संगम पर बाप के नजदीक जाए बुद्धि से. साकार की बात नहीं, बात बुद्धि की है, सूक्ष्म रूप की है. जितना बुद्धि से अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे उतना बाप के नजदीक पहुंचेंगे, और जितना नजदीक जाएंगे उतने अनुभव शुरू हो जाएंगे. बस बाप के पास पहुंचना, इसमें सारी समाप्ति नहीं है, ये तो शुरुआत है. जब तुम बुद्धि से बाप के पास पहुंच जाते हो तब तुम्हारे जीवन में संगम की शुरुआत होती है. संगम माना मिलन, तुम्हारा और बाप का मिलन. और मिलन जैसे बढ़ता जाएगा फिर अनुभव बढ़ते जाएंगे. तुम यह नहीं समझना कि मिल लिए माना अनुभव कर लिया, नहीं, मिलन बढ़ाते जाओ, अनुभव बढ़ता जाएगा. अनुभव करने के लिए बहुत बातें हैं. तुम किससे मिलन मना रहे हो? बाप से. बाप कौन है? बाप है टीचर है, सदगुरु है, महाकाल है, ईश्वर है. फिर सारे रिश्ते उसके साथ हैं. सिर्फ एक बार मिलन मनाने से कुछ नहीं होता, मिलते रहेंगे तो अनुभव बढ़ते जाएंगे, तो रिश्ते बढ़ते जाएंगे. सभी बच्चे अपनी इस जीवन की यात्रा को, संगम की आध्यात्मिक यात्रा को चेक करें. क्या बाप के साथ हमने सभी रिश्तों का अनुभव किया है? बाप हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है. क्या हमने अनुभव किया है क्या? और अगर नहीं किया है तो वह कमी रह गई, यह कमी खाएगी अंत में कि सबने सब अनुभव किए हम नहीं कर पाए. इसलिए बुद्धि से नजदीक पहुंचते जाओ. जितना मिलन मनाते जाएंगे बुद्धि से उतना शुद्ध होते जाएंगे. जितना शुद्ध होते जाएंगे उतनी पात्रता बढ़ती जाएगी. जितनी पात्रता बढ़ती जाएगी उतने रिश्तों का अनुभव होता जाएगा. बच्चा कैसा भी हो, हर बाप को प्रिय होता है. इस बात को ध्यान में रखना, बच्चा कैसा भी हो बाप को प्रिय होता है. लौकिक बाप को भी, जो है जैसा है, मेरा बच्चा है, मेरी क्रिएशन है. लेकिन टीचर सभी बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता। स्कूल में पढ़ने के लिए टीचर के सामने बैठने के लिए पात्रता चाहिए। अगर पात्रता है तो टीचर एडमिशन देगा, फिर ज्ञान सिखाएगा, फिर तुम्हें ज्ञान सिखाकर पढ़ा लिखा बनाएगा, ऊंचा बनाएगा। अभी तुम ऊंचे बन गए ज्ञान से, अभी सद्गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। सद्गुरु तो बिल्कुल किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको बड़ी पात्रता लगती है सद्गुरु को। उसके साथ चलना है, उसके पास बैठना है तो बहुत पात्रता चाहिए। ज्ञान में जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, उन्हीं को सद्गुरु एडमिशन देता है, अपने पास बिठाता है, अपने आश्रम में रखता है। गुरुकुल, सद्गुरुकुल, जो भी कहते हो, वह उसको रखता है, किसी को भी नहीं लेता। बच्चे को तो बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि बच्चा अभी तक स्टूडेंट नहीं बना है। स्टूडेंट बना है तो पढ़ा लिखा नहीं है। तो सद्गुरु किसी को भी नहीं लेता, ध्यान में रखना। उसके पास पहुंचने के लिए भी पात्रता चाहिए, फिर वो ज्ञान देगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, मार्गदर्शन देगा। सद्गुरु का अपना ज्ञान है, टीचर का अपना ज्ञान है, बाप का अपना प्यार है। ये तीनों भले एक है, लेकिन एक होके अलग है। तीनों को एक कभी मत करना, गलती से भी नहीं करना। तीनों अलग हैं। तुम जीवन भर बस बाप के कॉन्शियसनेस में रहोगे, तुम कभी शिक्षा नहीं ले पाओगे और कभी तुम्हें गाइडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम बाप का कॉन्शियसनेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। समझ है बच्चों के लिए? इसलिए सद्गुरु के पास पात्रता वाले चाहिए। जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनका सिलेक्शन टीचर करता है। जो टीचर के पास बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं, उनका सिलेक्शन सद्गुरु करता है। और सद्गुरु उन्हें मार्गदर्शन देकर विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ाता है। सद्गुरु का काम ही वह है कि विश्व की सेवा करना, दुनिया को सुख देना, दुनिया को सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पर चलाना, यह सद्गुरु का काम है। तो क्या करता है सद्गुरु? उन्हें सही रास्ते पर चलना सिखाता है, ताकि वो दूसरों को सिखा सके। ये काम सद्गुरु करता है। अब यह हुई सद्गुरु की बात। अभी सद्गुरु के बाद महाकाल बैठा है। बाप महाकाल है तो बच्चे मास्टर महाकाल है। महाकाल का काम है मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। सद्गुरु से सीख कर जब आप आगे बढ़ेंगे, पात्र बनेंगे, तो उसमें से भी चुन चुन कर महाकाल सिलेक्ट करेगा कि कौन इस दुनिया का परिवर्तन कर सकते हैं। दुनिया को तोड़ना भी है और खड़ा करना भी है, अवगुणों को समाप्त करना है और गुणों की दुनिया स्थापन करनी है। महाकाल का काम है मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। बाप के रूप में महाकाल है, बाप के रूप में बाप, टीचर के रूप में बाप, सद्गुरु के रूप में बाप और महाकाल के रूप में बाप। बाबा कहते समझो, यात्रा लंबी है। ऐसे नहीं कि बाप मिल गया माना सब मिल गए, गलत फहमी है। यात्रा बहुत बड़ी है, आगे बढ़ते रहो, सारे रिश्तों को अनुभव करते रहो बाप के साथ। संगम पर अगर सारे रिश्ते अनुभव नहीं कर पाए तो तुमने क्या पाया? बस बाप पाया, टीचर नहीं पाया। टीचर पाया सदगुरु नहीं पाया, सदगुरु पाया महाकाल नहीं पाया, और जिसने महाकाल भी पाया उसने सब पाया। समझ है बच्चों के लिए, बच्चे समझ कर चले। अब ये सब पाने के लिए उतनी याद चाहिए, उतनी याद चाहिए। बाप तो ऐसे ही मिल गया, पर टीचर की शिक्षाओं को समझने के लिए 8 घंटा योग चाहिए, कम से कम 8 घंटे का समर्पण चाहिए, तब आप टीचर की शिक्षाओं को समझ पाएंगे। समझ है बच्चों के लिए। सदगुरु की शिक्षाओं को समझने के लिए 12 घंटे का योग चाहिए और 16 घंटे का समर्पण चाहिए। तब जाके सदगुरु की शिक्षाओं को समझ पाएंगे, सदगुरु क्या समझा रहा है, सदगुरु क्या गाइडेंस दे रहा है। समझ है बच्चों के लिए। और महाकाल की शक्ति को धारण करने के लिए कम से कम 16 घंटे का योग चाहिए और 24 घंटे का समर्पण चाहिए, तब आप महाकाल की शक्ति को धारण कर पाएंगे और विश्व परिवर्तक बन जाएंगे, नई दुनिया इस सृष्टि पर लाएंगे। वरना मुश्किल है, बाबा कहते हैं। बाप को क्या, बाप बाप है, पढ़ाई की नहीं की, बाप अपना रोल अदा करने वाला है, बाप का बाप संभालने वाला है बाप बनकर। ऐसे बहुत बच्चे हैं लौकिक में जो स्कूल कॉलेज नहीं जाते, फिर भी बाप 4 टाइम खाना देता है, लौकिक बाप घर से बाहर नहीं निकालता, क्योंकि बाप का प्यार है। बहुत से बच्चे बाप के प्यार में फंसे हुए हैं, टीचर को समझने के लिए तैयार नहीं है, सदगुरु को देखने के लिए तैयार नहीं है। महाकाल छोड़िए दो, वो तो बाबा कहते बहुत दूर की बात है तुम्हारे लिए, अभी तक तुम टीचर तक नहीं पहुंचे हो, टीचर की शिक्षाओं को तुम धारण नहीं कर रहे हो। जब तक टीचर की शिक्षाओं को धारण नहीं करते, तुम अगली स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। सदगुरु की श्रीमद बुद्धि में बैठने के लिए बहुत ऊंची अवस्था चाहिए, वरना मन उछलता रहेगा। बाबा ने बोला तो ऐसे करने को, पर हमें लगता है ऐसे करने से होगा, हमें लगता है वैसे करना चाहिए। ये मायावी बुद्धि सदगुरु और उसकी श्रीमत समझ में नहीं आ रही कैसे करना है, ये मायावी बुद्धि है। ऐसे वैसे कैसे, इसमें चलते रहेंगे फिर नुकसान हो जाएगा। नुकसान होने के बाद बाबा कहेगा ड्रामा था, अभी ड्रामा में होना था, हो गया। पर बाबा कहता है बुरा लगे माफ करना, नुकसान होने वाले उस मूर्ख बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने श्रीमत तोड़ी इसलिए तुम्हारा नुकसान हुआ है, और तुम्हें और दुख ना हो इसलिए बाबा ने ड्रामा कहा है। पर गलती तुम्हारी है, तुमने तुम्हारी पैर पर कुल्हाड़ी मारी है श्रीमत तोड़ के। समझ की बात है, सदगुरु बहुत दूर है, श्रीमत बहुत दूर है। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं समझ जाना वो सदगुरु के पास हैं, सदगुरु के साथ हैं, सदगुरु उनके साथ हैं, सदगुरु उनके पास हैं। समझ की बात है। वरना मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसी में जीवन जा रही, जरूर कहो पर टीचर की शिक्षाएं भी लो। ऐसे नहीं ना कि शिक्षाएं कुछ भी नहीं लो, धारणा कुछ भी नहीं करो और कहते रहो हम तो बड़े प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा शुक्रिया बाबा। ऐसे थोड़ी होता है, सीखेगा कौन। बाप कहता है सिखाने का अधिकार मेरे पास नहीं है, सिखाने का अधिकार टीचर के पास है। गाइडेंस देने का अधिकार सदगुरु के पास है, भले वो मैं ही हूं, लेकिन बाप के रूप में मेरे पास वो अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें घर में बिठा के सिखा नहीं सकता, तुम्हें सेंटर आना पड़ेगा, मधुबन आना पड़ेगा, शिक्षाएं लेनी पड़ेंगी, घर में बैठकर कठिन होगा सीखने। लौकिक रूप में भी लौकिक पिता बच्चे को सिखाता है, लेकिन बच्चे की बुद्धि में उतना नहीं बैठता जितना वो स्कूल जाके सीखता है। बाबा कहते हैं योग बढ़ाओ। बाबा को याद करो। याद किसको करना है? आत्मा समझ के बाप को याद करना है। ध्यान रखो, याद बाप को करना है तो टीचर की शिक्षाएं समझ में आएंगी। धारण टीचर की शिक्षाओं को करना है तो सदगुरु की श्रीमत समझ में आएगी। चलना सदगुरु की श्रीमत अनुसार है तो महाकाल की शक्ति को धारण कर पाएंगे। समझ है बच्चों के लिए, यह यात्रा है, एक दिशा से नहीं चलो, समझ कर चलो। तो पहली शुरुआत है अपने को आत्मा समझो, अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाओ। जितना देर तक, जितना लंबा समय तक तुम अपनी स्थिति में रह सकते हो, अपनी स्थिति में रहो। अपने आप को देखो, तुम सितारा हो जिसमें 16 गुण शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार है, वही तुम्हारा 16 श्रृंगार है, वही तुम 16 कला संपन्न हो। तुम अपने आप को देखते रहो। जब ये पक्का होगा, ये जब पक्का होगा तुम्हारा, तो उसके बाद बाबा कहते हैं तुम उस स्वरूप में रहकर बाप को याद करो। मैं आत्मा, 16 कला संपन्न, 16 श्रृंगारों के साथ श्रृंगारी हुई, इस स्वरूप में बाप को याद कर रही हूं अपने बुद्धि से। जब बाप को याद कर रहे हैं तो मन उसका चिंतन करता रहे, मनन करता रहे बाप का, संकल्प मन में बाप के उठते रहे, संस्कार उन संकल्पों को, उस याद को अपने अंदर धारण करता रहे, पक्का करता रहे, सभी गुण शक्तियां भी भरपूर होती रहे। तुम्हारा पहला कर्तव्य है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। तुम करो तो फिर अगला पड़ाव शुरू होगा, तब तक तुम पीछे ही हो। बाप को याद करो। योग बाप से लगाना है तो टीचर का ज्ञान मिलता जाएगा। तुम योग नहीं लगाते और टीचर से ज्ञान लेने की कोशिश करते हो, ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं, उल्टा तुम अवज्ञा करोगे। बिना पात्रता के तुम टीचर को सवाल पूछ रहे हो। पहली स्टैंडर्ड का बच्चा 10वीं स्टैंडर्ड के टीचर को सवाल पूछे, शोभा नहीं देता। इसलिए जब तक तुम्हारी याद पक्की नहीं है तब तक तुम टीचर को सवाल मत पूछो। तुम टीचर की शिक्षाओं पर चलते रहो। तुम नापास भी हो जाओ तो भी चलेगा, पर बिना पात्रता के तुम सवाल मत पूछो, टीचर का अपमान होगा। अगर नापास हुए सवाल पूछकर भी तो बहुत बड़ा बोझ आएगा। पास हुए तो अच्छी बात है, बिना पात्रता के आपने टीचर को सवाल पूछा और पास हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नापास हुए तो डबल बोझ आ जाएगा कि तुम्हारी पात्रता नहीं थी, फिर भी तुमने टीचर को सवाल पूछा। इसलिए टीचर से बस ज्ञान लेते चलो। सवाल भी कब पूछा जाता है? टीचर की पहली शिक्षाओं को तुमने धारण किया हो तो तुम अगला सवाल पूछ सकते हो। तुमने पहली ही शिक्षाओं को धारण नहीं किया है और तुम सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारा सवाल क्या है कि आत्मिक स्थिति में क्या कैसे आए? इतने लंबे समय से तुम कर क्या रहे थे? अन्न ही खा रहे हो ना तुम? अन्न खाने की अकल है ना तुम्हें? चार टाइम भोजन करने की अकल है ना तुम्हें? 8 घंटा सोने की अकल है ना तुम्हें? तो ये इतनी सी अकल नहीं है कि आत्मिक स्थिति में कैसे आना है? इतनी सारी विधियां दी है, इतनी सारी ज्ञान की बातें समझाई है, फिर भी तुम वही पूछ रहे हो। 1936 से तुम्हारा वही सवाल है कि आत्मिक स्थिति में कैसे आना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने कभी 3 महीना 4 महीना अभ्यास किया है? 3 दिन 4 दिन करोगे और कहोगे कि बाबा नहीं हो पा रही, और क्या विधि करें? बाबा ने क्या कहा है? सदगुरु की श्रीमत क्या है? कम से कम एक धारणा 3 से 4 महीने करो, नहीं होती तो तुम सवाल पूछो कि ये कैसे करना है। पर तुम 3 दिन 4 दिन करते हो। देखिए, टीचर को सवाल पूछना भी एक बोझा है। टीचर से 1 मिनट बात करना भी एक बोझा है। बोझा कैसे? अगर तुम्हारी पात्रता नहीं है तो। पात्रता है तो 1 मिनट क्या, 1 साल भर बातें करते रहो, सवाल पूछते रहो, 100 साल भर पूछते रहो संगम के, चलेगा। पर तुमने पुरानी बातें धारण नहीं की और तुम अगले सवाल पूछ रहे हो। सारी विधियां बताई है कि आत्मिक स्थिति में कैसे आना है। क्या तुमने ब्रीदिंग प्रैक्टिस की है? जितने सारे प्रैक्टिसेस बाबा ने सिखाए हैं, तुमने कौन सी प्रैक्टिस 4 महीना की है बताओ? क्या किया है तुमने 4 महीना? इतना एक बाबा कहते तुम्हारे लिए वीडियो बनाया है कि मैं आत्मा हूं 1008 बार, कितनी बार किया है तुमने और कितनी बार अपने को वहां अनुभव किया है? बस जबान मुंह खोला और जबान बाहर निकाली सवाल के लिए। करो, पहले करो, और वो करने से नहीं हो रहा है तो तुम पूछो। समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे समझते नहीं। बस जबान खोलो और सवाल पूछो, मुंह खोलो और सवाल पूछो, करना कुछ नहीं, बस सवाल पूछना है। फिर भी बाबा जवाब देता है, लेकिन जवाब देने के बाद वो भी नहीं करते। बाबा कहते जो नहीं करते ना, थप्पड़ मारने का मन होता है। ऐसे स्टूडेंट चाहिए ही नहीं टीचर को, आओ ही नहीं बाप के पास। बाबा कहते मुझे जरूरत नहीं किसी की, अष्टरतन बन जाएंगे, 108 भी बन जाएंगे, 1008, 16000, 108, 9 लाख बन जाएंगे, मुझे जरूरत नहीं किसी की, तुम्हें जरूरत है। करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ये सवाल मत पूछो तुम। तुम्हारे ना आने से कुछ मेरा बिगड़ेगा नहीं, या तुम्हारे आने से मेरा कुछ सुधरेगा नहीं। जो बिगड़ेगा तुम्हारा, जो सुधरेगा तुम्हारा। समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे समझते नहीं। बस चलते रहना है, सवाल पूछते रहना है, ऐसे बच्चे। याद का आता पता नहीं, योग का आता पता नहीं, सवाल पर सवाल पूछे जा रहे। पहले योग करो, ज्ञान को समझो, फिर टीचर को समझो। पहले योग करो, आत्मिक स्थिति में आओ, बाबा को याद करो, फिर अगली बातें पूछो तुम। पिछला होमवर्क हुआ नहीं और अगले पार्ट की पढ़ाई जानना चाहते। समझ की बात है बच्चों के लिए, इसलिए बुद्धि से बाप के नजदीक आते जाओ, याद बढ़ाओ, वरना तुम बुद्धू के बुद्धू रहोगे। बाबा सब ज्ञान देकर चला भी जाएगा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं बैठेगा। तुम अकल के अंधे ही रहोगे पूरे जीवन भर। क्योंकि कभी ज्ञान लिया नहीं, कभी योग किया नहीं। योग करो, ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा। बिना योग के ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ सकता। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन लगता है, इसे कहते हैं ना, कहावत है। बाबा कहते ज्ञान की बात है, पहले योग बढ़ाओ, आत्मा समझ के बाप को याद करो, फिर सवाल पूछो, बाबा इसका क्या उसका क्या। सवाली इंसान हमेशा परेशान होता है, बेचैन होता है, उसको ही नहीं पता वो क्या पूछ रहा है, क्या पूछा, क्या पूछने वाला है, हमेशा बेचैन होता है। वो बस जवाब चाहता है, करना कुछ नहीं चाहता। असल में बाप को एक भी सवाल पूछने का अधिकार नहीं किसी को, किसी को नहीं। बाप जितना ज्ञान दे रहा है वो लो, तुम मुझे सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने कुछ लिया नहीं तुम्हारा, मैं कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूं जवाब देने के लिए, मैं कोई बंधा हुआ नहीं हूं जो तुम बड़ी आशा रखते हो, अपेक्षा रखते हो कि बाबा जवाब देगा। और तुम जो पूछ रहे हो ना वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है, पर बाप जो बता रहा है वो तुम्हारे जरूर काम की चीज है। इसलिए तुम पूछो नहीं, बस तुम लो। तुम्हें अकल नहीं है किस समय में क्या पूछना है और कौन सा ज्ञान लेना है, पर बाप को पता है किस समय में कौन सा ज्ञान देना है। तुम पूछो ना पूछो, बाप रोज नया ज्ञान देता रहता है, क्योंकि उस दिन उस ज्ञान की जरूरत है और वहां से संगम के अंत तक उस ज्ञान की जरूरत है। इसलिए पहले से पहला ज्ञान नहीं देगा, जिसकी जरूरत है वही देगा। और तुम वो पूछ रहे हो जिसकी तुम्हें अभी जरूरत नहीं, ऐसी बुद्धि है मनुष्यों की। इसलिए योग बढ़ाओ, योग बढ़ाओ। बाबा कहते जितना जितना नजदीक होते जाएंगे उतना उतना नजारे भी नजदीक होते जाएंगे। कौन से नजारे? अपने संपन्न स्वरूप के, संपूर्ण स्वरूप के। सतयुग तो आएगा, वो नजारे तुम देखेंगे। सतयुग के नजारों को देखने के लिए अपनी अवस्था संपन्न और संपूर्ण चाहिए। इसलिए पहले अपने संपूर्ण स्वरूप के नजारे देखो, संपन्न स्वरूप के नजारे देखो। तुमने कभी अपने आप को प्रेम स्वरूप, स्नेह स्वरूप देखा है, शांति स्वरूप देखा है, संपूर्ण पवित्र स्वरूप में देखा है, खुद के नजारे, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप कभी देखा है क्या, आनंद स्वरूप कभी देखा है? पहले ये तो देखो, फिर सतयुग की कल्पना करो। 10 रुपए कमाने का पता नहीं और सपने देख रहे महलों के, ऐसी अवस्था है। पहले 10 रुपए कमाओ, 100 रुपए, 1000 रुपए, 1,00,000 रुपए कमाओ, मना अपने एक एक गुण के स्वरूप में अपने को देखो। पहले गुण धारण करो, जब तुम सारे गुण धारण करोगे ना तो तुम विश्व महाराजन, विश्व महारानी के सपने सजाओ। एक गुण भी नहीं अंदर और कहते कि हम विश्व महाराजन बनेंगे, किसने कहा? बाबा कहते मैंने कहा है तुम्हें, पर्सनली तुम्हें कहा है क्या कि तुम बनोगे? समझो जरा, समझ कर चलो। समझ की बात है बच्चों के लिए, एक एक गुण के स्वरूप बनो। कितना ज्ञान है बाबा ने दिया है, इतना जो ज्ञान तुमने सुना है, पढ़ा है, इसमें से तुमने कितना धारण किया है बताओ। कोई ऐसा एक महावाक्य बताओ जो तुमने परमानेंट धारण किया है, जो तुम्हारी धारणा में है, तुम्हारे व्यक्तित्व में है। एक महावाक्य बताओ बाबा का, एक भी नहीं बताने जैसा, जो पक्का तुमने धारण किया है, एक भी नहीं। और तुम्हारे सवाल लाख के होते हैं। तुम हो खाक के और सवाल है लाख के, ऐसी अवस्था है तुम्हारी, है पास कुछ नहीं और सवाल बहुत बड़े बड़े पूछ रहे। पहले धारण करो, एक तो महावाक्य धारण करके बाप के सामने आओ, कुछ अधिकार तो रखो अपने पास बाप से बात करने का। एक महावाक्य धारण किया है बाबा हमने, ये परमानेंट, आज तक ये धारणा हमसे टूटी नहीं, एक तो धारणा दिखाओ। फिर ज्ञान की धारणा, बाहरी स्थूल धारणा छोड़ दो, ये खान पान की या बाहर की धारणा, कपड़ों की इसकी उसकी, वो मत सुनाओ तुम, उसमें तुम बहुत माहिर हो हम जानते हैं। ज्ञान की धारणा बताओ, कौन से गुण स्वरूप तुम बने हो, कौन से शक्ति स्वरूप तुम बने हो कि यह गुण तुमने परमानंद धारण किया है, यह शक्ति तुमने परमानंद धारण की है, बताओ तो सही। फिर तुम बात करने का अधिकार रखो अपने पास बाप से, वरना चुप रहो, तुम बस सुनो। एक बात ध्यान में रखना, बाप से सवाल पूछने में उतना योग बल नष्ट होता है, पात्रता लगती है। बाप को तुम क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, डाउट आए तो भी नहीं कर सकते, बाप की बात पर डाउट माना बाप पर डाउट है, फिर भी बाप समझाता है। बाप का काम है सिर्फ ऑर्डर देना, श्रीमत देना, समझाना बाप का काम नहीं है, करो या ना करो, कैसे करनी वो भी तुम जानो, वो मैं नहीं जानता, वो तुम खोजो। बाप का काम है सिर्फ श्रीमत कहना, तुम अगर उसको क्रॉस क्वेश्चन करोगे तुम्हारा योग बल नष्ट करोगे, कैसे करनी है ये भी पूछोगे फिर भी तुम्हारा योग बल नष्ट करोगे, इसलिए अपना योग बल नष्ट मत करना, बस बाप जो कह रहा है वो करना, सवालों में मत जाना, श्रीमत पर सवाल नहीं उठाया जाता। और बाप का हर महावाक्य श्रीमत है, बाप का हर बोल श्रीमत है, ये समझ की बात है, कैसे करना ये तुम जानो, ये भी मैं बताऊं तो तुम्हारा काम क्या है, बस खाना और सोना, मौज करना, समझ की बात है। अभी तुम छोटे नहीं हो, बहुत साल से ज्ञान में चल रहे हो, एबीसीडी नहीं पर ए तो समझ में आया होगा ना, तो समझ कर चलो, समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे समझते नहीं, इसलिए योग बढ़ाओ, योग बढ़ेगा तो बाप की बातें समझ में आएंगी, वरना तुम ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही चलते रहोगे, टीचर कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, सदगुरु कभी तुम्हें श्रीमत नहीं देगा, बस बाप लाड़ प्यार देता रहेगा और तुम्हें लगेगा बाप मिला, बाप खिलाता पिलाता रहेगा, मौज कराता रहेगा, तुम्हें लगेगा बाप मिला, और जीवन भर इसी गलत फहमी में तुम चलते रहोगे और अपना नुकसान करोगे, इसलिए योग बढ़ाओ, योग बढ़े, बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव बढ़े। अनुभव माना एक मिनट की बात नहीं, बाबा कहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो 8 घंटा, तब जाके टीचर की शिक्षाएं समझ में आएंगी, समझ की बात है, बाबा कहते हैं बच्चों के लिए। तो जितना जितना नजदीक होते जाएंगे उतना उतना नजारे भी नजदीक होते जाएंगे अपने स्वरूप के, संपन्न संपूर्ण स्वरूप के नजारे नजदीक होते जाएंगे। तुम बस अपने नजारे देखो, दुनिया के नजारे छोड़ दो और इसी में आगे बढ़ते रहो, स्वरूप बनते चलो, बाबा कहते हैं स्वरूप बनो, एक एक गुण का स्वरूप बनते चलो, संपूर्ण स्वरूप, उस गुण में बिल्कुल कमी ना हो, एक एक शक्ति का संपूर्ण स्वरूप बनो, ऐसे सभी गुणों और सभी शक्तियों का तुम संपूर्ण स्वरूप बनोगे तब जाके 16 कला संपन्न और संपूर्ण बनोगे। योग बढ़ाते चलो, इसके लिए याद बढ़े, बाबा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। याद बढ़ती जाए, कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति बढ़ती जाए, हर कर्म में हर श्वासोश्वास बाप और आप हो, यह याद रखना और अनुभव भी करना। अकेले नहीं रहना कभी, सदा बाप के साथ कंबाइंड रहना, और कम से कम 8 घंटा, कम से कम, उससे ज्यादा हो तो बाप बहुत खुश होगा, पर कम से कम 8 घंटा कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति करते चलो, कर्म करते चलो, कर्म में यह विधि करते चलो कंबाइंड स्वरूप। ऐसे नहीं कि 8 घंटा बैठ जाओ, घर का काम काज कौन करेगा, नौकरी धंधा कौन करेगा, फिर करते चलो, कर्म करते करते चलो। अच्छा, ओ शांति।